ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम नौवा स्कंद है, 18वां अध्याय है, श्लोक की क्रम संख्या है 43 है ना। तैतालीसवा 9.18.43 किंग ययाति रिगेन्स हिज यूथ। श्री पुरु उवाच कोनो लोके मनुष्य इंद्र पितर आत्मकृत पुमान प्रतिकर्तो क्षमो यस्य प्रसादात् विन्दन्ते पर। श्री पुरुरुवाच कोनु लोके मनुष्येन्द्र कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितर आत्मकृत पुमान पितर आत्मकृत पुमान प्रतिकर्तुं समो यस्य प्रतिकर्तुं समो यस्य प्रसादात् विन्दते परा प्रसादात् विन्दते परा। श्री पुरुरुवाच को लोके मनुष्येन्द्र पितर आत्मकृत पुमा प्रतिकर्तुं समो यस्य प्रसादात् विन्दते परा। कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितरात्मकृत पुमान प्रतिकर्तु समो यस्य प्रसादात् विन्दते परा। माताजी श्री पुरुरुवाच कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितरात्मकृत पुमान प्रतिकर्तु समो यस्य प्रसादात् विन्दते परा। श्री पुरुरुवाच को लोके मनुष्येन्द्र पितरात्मकृत पुमान प्रतिकर्तु समो यस्य प्रसादात् विन्दते परा। श्री पुरु उवाच, पुरु ने कहा, कह क्या, नो निसंदेह, लोके इस संसार में मनुष्य इंद्र मनुष्यों में श्रेष्ठ, हे महाराज, पितुः पिता आत्मकृतः इस शरीर को देने वाले पुमान व्यक्ति प्रतिकर्तम चुकता करने के लिए समह समर्थ है, यस्य जिसकी प्रसादात् कृपा से विन्दते भोगता है परम श्रेष्ठ जीवन। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज के द्वारा है। श्रीला प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से पूर्ण हो सके। पिता की ही कृपा से मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिससे वो भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। तात्पर्य, पिता शरीर का बीज दाता है और यह बीज क्रमशः विकसित होकर मनुष्य का रूप धारण करता है, जिसमें पशुओं की अपेक्षा उच्चतर चेतना होती है। इस मनुष्य शरीर से मनुष्य स्वर्ग जा सकता है और यदि कोई कृष्ण भावनामृत का विकास करे तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है। यह महत्वपूर्ण मानव शरीर पिता के अनुग्रह से प्राप्त होता है, अतः एवं हर व्यक्ति अपने पिता का ऋणी होता है। निसंदेह योनियों में भी उसे माता पिता मिलते हैं, यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों के भी माता पिता होते हैं, किंतु मनुष्य जीवन में पुत्र के माता पिता जो सबसे बड़ा वर दे सकते हैं वह उसे भक्त बनने की शिक्षा है। जब कोई भक्त बन जाता है तो उसे सबसे बड़ा वर प्राप्त होता है, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। अतः एवं जो पिता अपनी संतान को कृष्ण भक्त बनने का प्रशिक्षण देता है वही इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी पिता है। कहा गया है, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिल बज हरि के। माता पिता तो हर एक को मिलते हैं, किंतु यदि मनुष्य को कृष्ण तथा गुरु का वर प्राप्त हो जाए तो वह प्रकृति को जीत सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सब जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूं कि व्यास आसन पर बैठकर ये कथा भागवत करना ये मेरी क्षमता के बाहर का विषय है। बैठने की ही क्षमता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई गुण कितना भी कोशिश करूं प्राप्त हो ही नहीं पाता है। बस यही एक इच्छा रहती है कि वरिष्ठ वैष्णव लोग श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी जो है वो सब आदेश देते हैं तो कुछ सेवा करना चाहिए, छोटी मोटी जो भी हो सकती है। तो आपके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के बल पर मैं सदैव ये कोशिश करता हूँ। तो दोबारा मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, आज कृपा करके आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जो सेवा मुझे दी गई है वो श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों पर आधारित कुछ ठीक से कर सकूँ। ये कथा हम देखते आ रहे हैं कई दिनों से। पिछले सोमवार को मैंने अध्याय का जो पूरा सार जो कथा था वो बताया था और वहीं पे मैं रुका था एक्चुअली, कि वहां ययाति महाराज अपने बड़े पुत्र, उसके बाद छोटे पुत्र, उसके बाद छोटे पुत्र, ऐसे सबको पूछते जा रहे हैं। तो यहाँ पुरुर उवाच, पुरु को पूछा, सबसे पुरु से पूछा कि भाई तुम अपना जो युवान अवस्था है वो मुझे दे दो और मेरी जो वृद्ध अवस्था है वो तुम ले लो, तुम मेरे बेटे हो। तो पुरु उत्तर देता है इस श्लोक में, हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके। पिता की ही कृपा से मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है जिससे वो भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। आगे का श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आगे और कहता है, जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तम भक्त होता है या उत्तम पुत्र होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है वह द्वितीय श्रेणी का या तो मध्यम होता है। और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है वह तृतीय श्रेणी का होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह अपने पिता के मल के समान है। शास्त्र ये कहता है कि हर मानव ये कोशिश करता है कि उसे एक पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि ये वेद कहता है कि अपना जो पुत्र होता है वो हमें अनेक नरकों से बचा सकता है। विशेष करके पू नामक नरक का वर्णन हमेशा हुआ है शास्त्रों में कि पुत्र वही है जो पिता को पू नामक नरक से बचा देगा। अच्छा, ये पुत्र से क्यों अपेक्षा की जा रही है, पिता खुद ही क्यों भजन करके अपने आप को ही ना बचा ले, ये प्रश्न हो सकता है। ऐसा क्यों सोचते कि पुत्र आएगा और हमें बचाएगा, खुद ही भजन करके तो बच सकते हैं, ये तो हम शास्त्रों से जानते ही है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया इन्हीं दो चार श्लोकों में, आगे पीछे सब जगह में बार बार उसका वर्णन, दो बार शायद हुआ है वर्णन, कि पिता को ही वास्तविक एक्चुअली भजन करके अपने ही भजन के बल पे भगवत धाम जाना चाहिए, अपने आप को नरक से बचाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ कारणवश वो अपने स्तर से उसका पतन हो जाए, ये संभावना हमेशा रहती है। तो उस संभावना को दूर करने के लिए वो पुत्र की प्राप्ति करता है, यानी किसी भी तरह का वो रिस्क उठाना नहीं चाहते। खुद तो प्रयत्न करेंगे लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी कभी कभी हो जाता है ना, गृहस्थी एक ऐसी बड़ी माया जाल है ना कि इसमें ठीक से सच्चे भावना से सच्चे प्रेम से भजन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और विशेष करके इस युग में। तो इसीलिए पिता ये चाहते हैं कि पुत्र मिले। कई बार ये शास्त्र में वर्णन आता है कि कहीं कहीं पे पिता को पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं। बेटी होगी तो अब क्या करें, अब उसे पुत्र नहीं है, अब खुद का भी स्तर नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटियां हैं तो क्या करेंगे। तो भागवत में वर्णन आता है कि ऐसे समय में पिता जो होता है वो अपनी बेटी जो है उसका कन्यादान ऐसे व्यक्ति से करवाएगा, और उस व्यक्ति से कन्यादान करने के पहले उससे वार्तालाप करके एक शर्त रखता है कि भाई आपके यहां जो पुत्र आएगा वो पुत्र आप मुझे दे दीजिए, वो मेरा वारिस बनेगा, अथवा कम से कम उस पुत्र को ये बताना कि मेरा जो है तर्पण मेरे लिए भी जो उसे पिंडदान तर्पण वगैरह करके मुझे जो नरक से मुक्ति दिलवानी होगी वो भी कार्य वो संपन्न करे। ये वेद कहता है और शास्त्र इसको अनुमति दे रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी इस बात को समझाने के लिए चौथे स्कंद भागवतम का एक उदाहरण भी देते हैं, जहां पे स्वयंभू मनु जो थे जो ब्रह्मा के पुत्र है उनकी तीन बेटियां थी, उसमें एक अकुति थी, उनके दो पुत्र भी थे। हालांकि वो पुत्र है लेकिन उन्हें जब ऐसे लगा कि शायद ये पुत्र पता नहीं क्या करेंगे, तब अपने ही बेटी अकुति का विवाह उन्होंने प्रजापति रुचि से करवाया। और विवाह के पहले उन्होंने शर्त रखी कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करता हूं लेकिन एक शर्त पे कि आपके यहां जो पुत्र प्राप्त होगा वो पुत्र आप मुझे दे देंगे, वो मेरा वारिस बनेगा और मेरा तर्पण करेगा, मुझे नरक से बचाएगा आगे चल के। तो प्रजापति रुचि ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। हालांकि उस समय वो नहीं जानते थे प्रजापति रुचि कि उनके वहां जो पुत्र आने वाला है वो स्वयं भगवान होने वाले हैं, और ये बात स्वयंभू मनु जानते थे कि इनके यहां जो पुत्र आएगा वो स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ रूप में आने वाले, जिनका नाम यज्ञ पड़ा था। तो वो यज्ञ अवतार वो चाहते थे कि अरे ऐसा बेटा मिल जाए तो निश्चित ही मेरा कल्याण होगा, तो अब यहां के पुत्र का हमें क्या विषय कामना रखनी चाहिए। तो वो शर्त रखी और आगे चल के उनको जो पुत्र हुआ अकुति और प्रजापति रुचि का, उनका बेटा जो हुआ जिसका नाम यज्ञ अवतार प्रसिद्ध अवतार है, उनकी बेटी जो हुई थी वो भी लक्ष्मी की ही अवतार थी, वो उनको प्रदान कर देते, मीन्स बेटा प्रदान करते बेटी को रख लेते अपने पास, और बेटा आगे चल के स्वयंभू मनु का सब जो ऑब्वियसली जब भगवान ही अपने घर में पुत्र बन के आए तो निश्चित ही उद्धार उनका हो जाता है। तो ये पिता की बात हुई, लेकिन पुत्र की बात क्या हुई। तो यहां पे पुत्र ये कह रहा है कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि जो हमारा ऋण है पिता के प्रति वो ऋण चुकाने का एक मौका मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो पुत्र का ये ऋण होता है जैसे ही उसको मानव शरीर प्रदान किया, हम लोग हमेशा कहते हैं पिता तो राधा कृष्ण है, भगवान है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता, क्लियरली भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सभी योनियों के बीज प्रद पिता मैं हूं। लेकिन यहां पे देखिए तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि बीज प्रद तो पिता है यहां का, देखिए यहां पे कहते हैं पिता अपने संतान को, पिता ही इस मनुष्य शरीर का बीज देते हैं और वो पुत्र इसका ऋणी हो जाता है, शरीर का बीज दाता है। तभी पिता कौन है, देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य में सबसे पहला लाइन है पिता शरीर का बीज दाता है और यह बीज क्रमशः विकसित होकर मनुष्य का रूप धारण करता है। तो बीज कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहे या यहां के भौतिक माता पिता दे रहे। सर्व योनि सुकौंतेय, भगवान कृष्ण कहते सर्व योनि, सिर्फ मानव ऐसा नहीं बताया, सभी योनियों में बीज प्रद पिता तो मैं हूं। और यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि बीज प्रद तो पिता करते हैं, कौन कर रहा है वास्तव में, भगवान जो कह रहे हैं भगवद गीता में वो आत्मा की बात कर रहे हैं कि उस योनि में आत्मा जो बीज है, आत्मा जो है वो मेरा अंश है, मैं उसका पिता हूं, बीज प्रद पिता। लेकिन प्रभुपाद जी यहां जो कह रहे हैं वो इस भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं। इस भौतिक शरीर का बीज प्रद पिता है तो वो इस संसार का जो हमारा पिता है। तो ऋण दोनों का हो गया, भगवान का तो ऋण है ही, जिस दिन से हम भौतिक जगत में आए हैं उस दिन से भगवान के प्रति हमारा ऋण तो चढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि सारा संपत्ति उनका है और सारी उनकी संपत्ति का हम भोग कर रहे हैं। और वो भोग करने की शक्ति, वो समझ, वो सुविधा, जो कुछ भी है वो तो भगवान ही दे रहे हैं। लेकिन भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है कि इस संसार का कोई व्यक्ति आपका पिता बनेगा, उस पिता को शक्ति भी भगवान ने दी है, लेकिन फिर उसको एक आंशिक स्वतंत्रता भी दी है। उस माता पिता को शक्ति दिया, आप करोगे, एम्पावर कर दिया, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को आंशिक स्वतंत्रता भी है। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, मिताई गौर प्रेमानंदी। शक्ति दिया, एम्पावर किया, लेकिन उसके बाद भगवान हम सभी को एक आंशिक स्वतंत्रता दे देते हैं। उस आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अगर माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण न करे तो उसका किस्मत खराब, कुछ नहीं हो सकता है। कहीं कितना हम संसार में देखते हैं कि जब माता पिता अगर अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करते, उनको ठीक से स्कूल नहीं भेजते, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता या उनको वैदिक ज्ञान नहीं दिया जाता, बचपन से ही उसको सिनेमा घर लेके जाते हैं, मांसाहार करवाते हैं, हाँ, या क्या क्या उनको गलत चीजें सिखवाते हैं, उसके सामने ही पिता सिगरेट पीता है, बच्चे भी कहता है कि दारू लेके आओ मेरे लिए, यानी कुछ संस्कार नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या मतलब है पिता बनकर। और ऐसे अगर पिता किसी व्यक्ति को मिल गए तो उसका दुर्भाग्य तो देखिए कि मानव शरीर में आने के बाद भी उसे किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण घर से नहीं मिल रहा है कि ये मानव शरीर कितना कीमती है और ये भगवान को प्राप्त करने का एक उत्तम स्थान है, शरीर है। इसको जिसने भी मिस किया, इसको जिसने भी चोक कर गया, पता है कई कितने हजारों करोड़ों साल वापस जा सकते हैं दोबारा इसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए। नो वन नोस कितने साल आएंगे, करोड़ों 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 साल। कितने उच्च जो शरीर होते हैं ना, वो भी आजकल के युग में कितने कष्टदायी है, इसका मैंने कल एक उदाहरण देखा। कल शाम को हम यहाँ पीछे जो पेंकरपाड़ा में तबेले वहां गए थे गाय का दूध लाने के लिए, जब गाय को वो धोते हैं तभी, तो धो रहा था मैंने, हम लोग ने दूध मांगा, लीटर एक एक लीटर दूध लिया, और उसको मैंने पूछा कि ये गाय इधर तुम बांध के इधर घास चारा डाले हो, ये तो सूखा घास है, तो गिल्ला और अच्छा ग्रीन ग्रास खिलाने के लिए कहीं बाहर इसको नहीं लेके जाते? तो उसने बताया कि पहले हम लेके जाते थे, अब तो मीरा रोड में इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं कि अब कहीं जगह बची नहीं है, और दूसरी बात कहीं छोटी मोटी जगह हो तो वहां लोग हमें जाने भी नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं है, अब किसी न किसी बिल्डर की वो जगह हो गई है, तो अब हम इसे नहीं ले जा सकते। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये सूखा घास यहाँ पे ही खाती है, तो यहां से कहीं जाएगी नहीं क्या, यहीं बंदी रहेगी? तो बोले जब से यहां आती है ना वो मरे तब तक अब इधर ही बंदी रहती है, इधर ही घास जो मैं दूं वो खाती है, इधर ही सोती है, इधर ही मलमूत्र करती है, इधर ही इसका अंतिम संस्कार जो भी है वो होने वाला है। अब सोचिए गाय एक कितना वेद में जिसको 33 करोड़ देवता जिसके शरीर में है, इतना उच्च योनि है, हाँ सत्व गुण की योनि है, अब इस जीवन में इस प्राणी को कष्ट तो देखे, एक ही जगह में उसको बांध के रखा जाएगा जीवन के अंत तक, वो कहीं नहीं जा सकती, वहां से वो कहीं नहीं जा सकती, तो जो घास उसे दिया जाएगा वहीं पे उसे खाना है, सूखा घास। सोचिए हम लोग मनुष्य को अगर पेट में कुछ गड़बड़ होती है, गैस होता है, एसिडिटी होती कुछ होती है, तो हम तुरंत घर से बाहर निकल के बोलते चलो वॉकिंग करके आओ, लंबा सा अच्छा सा थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, अच्छा शरीर और स्वास्थ्य बनेगा और मन को प्रसन्नता मिलेगी। अब उसके लिए वो पॉसिबल ही नहीं है, वो गाय बंधी हुई है उधर, वो जा ही नहीं सकती कहीं। तो ये भी देखिए ना कितना कष्टदायक, अगर योनि अगर मिल गया जहां पे एक ही जगह पे पूरा जीवन बांधा आपको रखा जाएगा और किसी और की कृपा पे ही आप है, वो नहलाएगा तो आप नहाएंगे, वो खिलाएगा तो आप खाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं, पड़े रहो, कष्ट है ना। कई कितने करोड़ों करोड़ों साल बीत जाते हैं, एक पहाड़ का योनि मिल गया तो ये जो मीरा रोड में ये पहाड़ दिख रहा है कम से कम कितने साल पुराना रहेगा किसको मालूम है, लेकिन वो एक जीव है, एक व्यक्ति है कोई जो इस योनि में इधर ही खड़ा है। तो पिता का बहुत बड़ा ऋण होता है, माता का बहुत बड़ा ऋण होता है कि जिसने हमको मनुष्य जीवन दिया, कि कारण से अगर उसने भक्ति हमें नहीं सिखाया तो भी कम से कम ये ऋण तो है, तो इसने जन्म दिया, हमको खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, बीमारियों से बचाया और बड़ा किया। अब बड़े होने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि क्या भौतिक ज्ञान है क्या आध्यात्मिक ज्ञान है। पहले तो ये नहीं थी ना समझ, जिस दिन मैं एक दिन का बच्चा था मुझे कहां पता था कि ये भौतिक ज्ञान है ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो हमारा ऋण होता है। परशुराम जी इसी ऋण को ध्यान में रखते हुए बताए ना अपने पिताश्री को, जमद अग्नि को, जो भी आदेश दे हम पालन करेंगे, माता को मारना है तो मारेंगे। हाँ, ये सब ये भगवान भी हमें सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी अपने पिता के लिए श्राद्ध करने के लिए जाते हैं गया, रामचंद्र जी आते हैं नासिक गोदावरी तट पर। तो ये सब भगवान भी अपने अवतार में जब जब मनुष्य लीला किए, भक्ता किए, स्वयं आए, तो वो लोग सिखाते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। अहम बीज प्रद पिता, शरीर के पिता तो वही है और हमारा यह कर्तव्य है, ये बात यहाँ पुरु भी बता रहा है। और आगे फिर पुरु कहता है कि वो बेटा ही फर्स्ट क्लास बेटा है जो ये जान ले के मेरे पिता मुझसे क्या चाहते हैं, बिना बताए जानकर समझकर वो करने लगता है, वो फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास बेटा कौन है, जो पिता के जानने बताने के बाद करता है, लेकिन बताया पिता ने तुरंत कर देता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बहस नहीं क्यों करूं वगैरह। तीसरा पिता ने बताया, थर्ड क्लास पिता ने बताया, इसकी इच्छा नहीं है, बहस करने के बाद करता है, अनिच्छा से कर रहा है, वो थर्ड क्लास बेटा कहा गया है यहां पे भागवत कहता है। और चौथा पिता के बताने के बाद ही नहीं कहता है, उसे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास बेटा ही नहीं, उसे मूत्र या भागवत स्टूल कहता है, वो मल है पिता का और कुछ भी नहीं है। और एक कवि कहते हैं वो मूत्र है, वो पुत्र नहीं है। तो ये वेद कहता है, ये शास्त्र कहते हैं, इसलिए पिता का कर्तव्य जैसे है वैसे पुत्र का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि उसे अपने पिता की इच्छाओं को पूर्ण करना है, उसके आदेश का पालन करना है, उसका ऋण चुकाना है। ब्रह्मा के भी चार कुमार बेटे थे, जब उन्होंने बताया कि नहीं हम आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो परम पिता ब्रह्मा भी क्रोधित हो गए थे, बोले क्या कर रहे हो तुम। ये अलग बात है कि वो शत प्रतिशत शरणागत कृष्ण भक्त बनना चाहते थे, उनके लिए ये फिर नियम न लगे आगे चलकर, वो आगे चलकर नहीं लगेगा, लेकिन इस समय को ये नहीं कह सकता है कि मैं भक्ति करने जा रहा हूं तो मैं सारे ऋणों से मुक्त हो गया। अगर हम शुद्ध भक्ति करें तो उस दिन से हम सभी ऋणों को एक ही ऋण से चुका रहे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम वो स्तर पे नहीं है हम अपने आप से ये मंतव्य नहीं कर सकते कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई और ऋण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत प्रचार हो जाएगा। शिला प्रभुपाद जी ने कभी ऐसे कहीं नहीं सिखाया अपने शास्त्रों में, उनके अनुयायी आचार्यों ने भी ये नहीं सिखाया है, ये हम ही अपना तथाकथित मंतव्य खुद बना लेते कभी कभी कहीं कहीं से, जो अपने अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य का स्वभाव होता है कि वेदों से कोई ना कोई एक श्लोक व्लोक निकाल के उसको बहाना बना के जस्टिफाई करने का, कि देखो भाई ऐसा कुछ बताया है वेदों में इसलिए मैं कर रहा हूं। हाँ, ये मनुष्य का एक भाव होता है वेदों को मचोड़ के अपना तात्पर्य निकालने का। और भगवान भी ऐसे व्यक्ति से संतुष्ट होते हैं जो अपना ऋण को समझते हैं, चुकाते रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। हम कितना भी जप कीर्तन करते रहे लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं और हम भगवान को अच्छी तरह से एकदम सिस्टमेटिक कोशिश करके भोग लगाने की कोशिश करते, ये करते, लेकिन भगवान अगर हमसे संतुष्ट नहीं है तो हमारा भोग भी स्वीकार नहीं करते, उन्हें पड़ी नहीं है। लेकिन यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान अगर आपसे संतुष्ट है, भगवान अगर आपसे प्रेम करते हैं, भगवान अगर आपके प्रेम के भूखे हैं, आप भोग नहीं लगा वो छीनकर आपसे खा लेते हैं। आप देना नहीं चाहते, आप लगाना नहीं चाहते, आपसे छीनकर खा लेते हैं भगवान। हाँ, प्रसिद्ध गोपियों का तो उदाहरण है ही। हाँ, जहां वो कंप्लेन करने आती है यशोदा मैया को कि तेरा बेटा जो है वो हमारे घर में आके चोरी करके खाता है, इसको पकड़, इसको बांध, इसको समझा। लेकिन वास्तविकता क्या थी? जब यशोदा मैया कहते ठीक मैं इसे डांटूंगी बांधूंगी, तो बोलते नहीं 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 नहीं, डांटना बांधना मत, ये आएगा हमारे घर चोरी करेगा तो ही हमें अच्छा लगता है ना। और ऐसा नहीं कि चलो महान भक्तों के साथ ही शायद भगवान ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पृथ्वी पे ऐसे कई कितने ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, शुक्लंबर ब्रह्मचारी जिसके चावल जो टूटे फूटे भंगार बरसों पुराने चावल उसकी थैली में थे, वो कल्पना में भी कभी भगवान को ऐसे चावल खिलाने का सोचता नहीं था, लेकिन चैत्य महाप्रभु उसको पकड़कर उसकी थैली में हाथ डालकर जबरदस्ती वो चावल लेकर खाते हैं, जिस तरह सुदामा के चावल भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में खाए थे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई आप तो भाई पहले गोपियों की बात की हो तो महान भक्त है, ये सुदामा ये तो भगवान के पार्षद लोग हैं, शुक्लंबर ब्रह्मचार्य ये तो पार्षद है। हाँ, यहाँ का कुछ अभी का कुछ 100-200 साल का कोई इतिहास है क्या जहां भगवान आकर सामने से मांगकर या छीनकर खाते हैं? 1920 की एक घटना है, सत्य घटना, ये वृंदावन में ही हुई थी। बांके बिहारी मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन का, बांके बिहारी मंदिर के बाहर में जो मिठाइयों की दुकानें हैं, आज तो बहुत सारी बन गई है लेकिन उन दिनों में बहुत कम मिठाइयों की दुकान थी। 1920 में एक समय एक ही दुकान मिठाई की थी, तब की यह घटना है। उस दुकान का मिठाई बनाने वाला व्यक्ति एक ही था, मालिक जो था वही मेहनत करके पूरा दिन मिठाई बनाता बेचता और लोग आते खरीदते और भगवान को भोग लगाते। लेकिन भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त था वो जब मिठाई बनाता तो ये नहीं सोचता था कभी कि इसमें मुझे मुनाफा कितना होगा। उसका कोई ये इंटेंशन कभी नहीं रहा इसमें मुनाफा कितना होगा और इसमें मुझे मेरा परिवार के लिए कितना मिलेगा, कौन आए कौन खरीदे। वो हमेशा ये सोचता कि मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूं, कोई आए खरीदे न खरीदे कुछ नहीं, लेकिन मैं ये भगवान के लिए बड़ी स्वच्छता से एकदम प्रेम से बनाता था। लोग आते बनाते और भगवान स्वीकार करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति एक भक्त उधर आया और कहने लगा कि मुझे कल सुबह मंगल में बांके बिहारी को 40 लड्डू भोग लगाने हैं, क्या आप 40 लड्डू बना के सुबह तक दे सके, रात का समय आके, ऐसे कहता। अभी वो अकेला आदमी था, 40 लड्डू अकेला रात भर जागेगा तो भी कैसे बनेगा पता नहीं, तो वो मना कर सकते थे लेकिन वो सोचे कि नहीं, बांके बिहारी को भोग लगाना है ना तो मुझे करना चाहिए। हालांकि ये व्यक्ति कोई इतना भक्त नहीं है, ये तो बस नॉर्मल विजिटर है, रूटीन में आ रहा है, कोई पैसे वाला धनी व्यक्ति है जो 40 लड्डू का ऑर्डर दे रहा है और सुबह सुबह चाहिए उसे। तो ये स्वीट स्टॉलर जो है ना, वो भक्त ने कहा कि मैं बना दूंगा आप जाइए। अब ये रात को बैठ गया लड्डू का सामग्री लेके बनाने के लिए, ये अकेला था, बनाया जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा था उसको, लेकिन फिर भी कर रहा है क्योंकि उसके मन यही इच्छा थी कि बांके बिहारी को खिलाना है। रात को 2 बजे एक छोटा सा लड़का आके बोलता है कि मुझे एक लड्डू खाना है, अभी बहुत भूख लगी, आप मुझे दीजिए। तो वो व्यक्ति जो लड्डू बना रहे हैं उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा है, भूखा है, जो मांग रहा है लड्डू मुझे दीजिए। तो मन में सोचे कि क्या करूं, भगवान के लिए भोग बना रहा हूं, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन ना बोल पा रहे हैं कुछ, ना मन में कुछ आगे सोच पा रहे हैं, स्वाभाविक ही उनका हाथ लड्डू पे जाके उनको दे देता है, उस लड़के को दे देता है। तो लड़का कहता है कि ठीक है, आपने मुझे लड्डू दिया मैं खाऊंगा, बदले में मैं कुछ आपको धन, तो मेरे पास रुपया रोकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कंगन है सोने का, ये आप रख लीजिए, मैं फिर कभी आके आपसे हिसाब किताब करूंगा। ऐसा उसके हाथ में कंगन रखे वो चला गया लड़का। और सुबह जब हुई, अब बांके बिहारी के पुजारी जब खोले पट को और श्रृंगार करने लगे तो बैंगल गुम थी। और जब बैंगल गुम थी तब वो खोहा हो गई, अरे भाई सोने की कंगन कौन चुरा गया, क्या हो गया करके। और चारों ओर एक दूसरे को, सब ब्राह्मण लोग एक दूसरे को पूछ रहे, पंडे लोग कहाँ है कहाँ है, किसी को कुछ पता है कि चोरी हो गई है बैंगल। तो वो स्वीट स्टॉल भक्त ने जब सुना, वो सामने से बोले, अरे इधर आइए, ये देखिए जरा, ये तो कंगन नहीं है बांके बिहारी की। देखा तो बोला, हाँ यही है कंगन, यही कंगन तो हम ढूंढ रहे। तो बोले कैसे मिली आपको? तो उसने सारा वृतांत बता दिया कि मैं ऐसे लड्डू बना रहा था, 2 बजे आके किसी लड़के ने हमसे मांगा, हमने उसको लड्डू दिया और उसने हमको ये कंगन दिया। यहाँ पे हम देख रहे कि भगवान सामने से आपका भोग खाने के लिए आ रहे है ना, सामने से कहीं पे चोरी कर रहे, कहीं पे मांग रहे है, कहीं से छीन के ले लेते हैं। सुदामा से छीन के लिया चावल, वो नहीं देना चाहते हैं, शुक्लम्बर ब्रह्मचारी नहीं देना चाहता था चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन भगवान सामने से देते हैं, छीन कर ले लेते हैं। अब बदले में कहीं पे कुछ महल दे रहे, कहीं पे कंगन दे रहे, क्योंकि भगवान जब भी किसी से कुछ लेते हैं तो हजारों गुना करके देते हैं, है ना। अरे किसी से नहीं लेते तो भी हजारों गुना करके ही देते हैं। अब जब लिया ही नहीं है तो हजारों गुना कैसे, जीरो जैसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ होता ही नहीं है, आध्यात्मिक जगत में जीरो जैसा कुछ नहीं है, सब एक ही है। तो भगवान को कुछ आपने दिया कि नहीं दिया, बेसिक फैसिलिटी जैसे हर पिता अपने पुत्र को देता है, वैसे हर मीन्स भगवान अपने हर संतान हर जीव को बेसिक फैसिलिटी देती है। यह हमारा कर्तव्य है कि इन सारी बातों को समझ के अपना ऋण चुकाते हुए हम भक्ति करते 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 आगे बढ़े, हम उसमें स्थिर बने, हम भक्ति के फलों से अनासक्त बने। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी सिखाते हैं, भक्ति के फलों से भी अनासक्त बने। अब 2 दिन पहले जब प्रभुपाद जी का तिरुभाव उत्सव चल रहा था तो मैं सोचा कि अगर मुझे बताया जाए कि आप कुछ बोलिए तो मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ बताना है प्रभुपाद जी के बारे में। कई कितनों से हम लोग पढ़े आ रहे हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, उससे कुछ सीखते हैं फिर उसी को बताते हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है तो सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ बता दिया, अब क्या बताऊं, कुछ नया बताना चाहिए। जो मन है ना, बुद्धि कह सोचता है, बोलते कुछ नया बताना चाहिए। ये मानव की वृत्ति है, उसे एक चीज से कभी संतुष्टि नहीं होती है, वो नया 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 खोजते जा रहा है, कुछ नया चाहिए, नया चाहिए। और वही वृत्ति वो यहाँ शास्त्रों में लगाता है, हालांकि ये गलत वृत्ति है। तो मैंने सोचा क्या पढूं, तो मन ये कह सकता है कि भाई कुछ और किताबें उठाइए, और कितने ग्रंथ है, कितने लोगों ने लिखा है, इस्कॉन के अलावा भी तो अनेक ग्रंथ है, या इंटरनेट पे जाके अन्य लोगों के ग्रंथों को, अन्य लोगों की बातों को सुनूं। लेकिन फिर मैंने ही सोचा कि ये सब करके क्या फायदा होगा, ये मन की वृत्ति है, एक्चुअली वास्तविक वृत्ति नहीं है। हाँ, मन ये कह रहा है ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो, अगर हमें कुछ नया भी सीखना है तो दोबारा शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ही पढ़ना पड़ेगा। आप जितनी भी बार पढ़ो शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, हर समय आपको कुछ नया 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 सीखने मिलता है, गारंटेड। हम कितनी भी बार पढ़ लें, ये कभी नहीं सोच सकते कि हमको अब नया कुछ सीखने उसमें से नहीं मिल सकता है। ये आप लोगों ने भी अनुभव किया रहेगा, जिन्होंने शिला प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों का अभ्यास किया है वो निश्चय कह सकता है कि दोबारा जब पढ़ते तो हमको पता चलता है, अरे ये तो हम समझे ही नहीं थे पहले। ये वृत्ति गलत है कि हमने प्रभुपाद जी के ग्रंथों का पूरा अभ्यास अभी किया नहीं और इधर उधर से नए नए ग्रंथ पढ़ते जाएं और कुछ भी बोलते जाएं, कुछ भी चलाते जाएं, ये गलत है। एक्चुअली हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों से ही जीवन भर पढ़ पढ़ के समझ सकते हैं, या उनके जो वरिष्ठ आचार्य वैष्णव वृंद जो है, जो उनके शिष्य है, उनके अनुभूति, उनकी रियलाइजेशन के जो अनुभव होते हैं बरसों के भक्ति के, उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ के भी हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने तय किया कि नहीं, मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा, शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को दोबारा या उनके शिष्यों को दोबारा मैं पढ़ूंगा और समझूंगा, और ये नया कुछ सीख रहा हूं, अगर कुछ नया सीखने समझने मिला तो मैं बताता हूं। तो एक आश्चर्य की बात हुई, जो सही में इतने सालों के बाद अभी तक मुझे जो प्रिंसिपल नहीं समझने सीखने मिला था, वो उस दिन पढ़ने से, दोबारा पढ़ने से सीखने मिला। अब तक मैं ये समझ रहा था कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ कि कर्मण्येवाधिकार से मा फले सुकदाचन, कर्म करने का तुझे अधिकार है लेकिन कर्म के फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वो फल क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, किसे देना है, वो अधिकार भगवान कहते हैं मेरे हाथ में है। अब हम हायर प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति जब सीखते हैं तो हम ये सीखते हैं कि भगवान हमें फल दे कर्म का या न दे। अगर नहीं दे तो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी, लेकिन अगर दे तो भी उस फल से हम आसक्त नहीं बन सकते और वो फल जो है वो हमारे लिए नहीं है, उस कर्म का फल भी है वो हमें भगवान को अर्पण कर देना है ना। ये कर्म फल भी जो हमें मिला है, हाँ, चाहे हम नौकरी करके पगार हमें मिलता है, चाहे बिजनेस करके कुछ धन मिलता है, चाहे कुछ और कुछ कार्य करने से हमें जो कुछ फल मिल रहा है, नाम मिल रहा है, सुविधा जो मिल रही है, ये सारा फल जो कर्म फल है वो हम गुरु को और भगवान अर्पण करें। लेकिन अब तक मैं यही सोचते आ रहा था, समझते आ रहा था कि भौतिक कार्यकलाप जो कुछ हम करते हैं इसका जो फल हमें मिलता है वो फल हम भगवान को अर्पण करें, ये हम शास्त्रों से, प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, भगवान से, भगवद गीता से सीखते आ रहे हैं। अब क्या नया सीख मुझे सीखने मिला उस दिन, ये मैं बताना चाहूंगा। वहां पे ऐसे एक जो उनके वरिष्ठ वैष्णव है राधानाथ महाराज, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वो नेट पे मेरे हाथ में आया तो मैं उसे पढ़ने लगा। वहां पे राधानाथ महाराज लिखते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी भागवत प्रवचन करने के लिए न्यू वृंदावन आए थे, वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में। तो प्रभुपाद जी वहां बहुत दिन रहने वाले थे और श्रीमद भागवतम प्रवचन करने वाले थे, तो वहां जो थोड़े भक्त लोग थे, वो जंगल था उस समय में, पड़ेगा आप लोगों को, वेस्ट वर्जीनिया एक बहुत बड़ा, एक विशाल इस्कॉन की एक प्रॉपर्टी है। आज की तारीख में वहां पे एक सुवर्ण मंदिर है जो प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने बनाया है, लेकिन पहले एक जंगल था, जब दिया गया था एक घना जंगल था और कुछ नहीं था, छोटा सा एक शेड में वो भक्ति कर रहे थे, वो लोग शुरू किए थे प्रचार, उन दिनों की बात है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं वहां आके थोड़े दिन भागवत प्रवचन करूंगा। तो सब शिष्यों ने तय किया कि प्रभुपाद जी के लिए कम से कम एक छोटा सा अच्छा कमरा बनाए और एक अंदर मस्त टॉयलेट की व्यवस्था करें, जहां पे अंदर पानी आता हो, फ्लश हो वगैरह सिस्टम होनी चाहिए, ना कि जंगल में हम लोग जैसे जाते हैं मल त्याग करने, उनको भी जाना पड़े। तो तय हुआ, सबने एक मस्त सुंदर घर बनाया, टॉयलेट बनाया। अब प्रभुपाद जी का आने का समय हुआ, तब फाइनली एक शिष्य ने बोला कि भाई सब चेक कर लो और फिर एयरपोर्ट जाते हैं। एक शिष्य टॉयलेट में गए, फ्लश बटन दबाया तो फ्लश नहीं चल रहा था। अरे बोले कि अभी तो प्रभुपाद जी आ जाएंगे, अब तो समय हो गया है, अब क्या करें, हम सब लोग जा रहे हैं, कोई और तो था नहीं। तो प्रभु उन्होंने तय किया कि ये राधानाथ महाराज यहां रुकेंगे और बाकी सब जाएंगे प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट से लाने के लिए। तो राधानाथ महाराज सोचे मुझे तो आता नहीं है, मैंने तो कभी ये काम किया नहीं है, फ्लश रिपेयरिंग वगैरह, लेकिन अब मुझे आदेश दिया है भक्तों ने तो मैं रुकूंगा, और सब प्रभुपाद जी को लेने गए और महाराज रुक गए। अब फिर महाराज फ्लश रिपेयरिंग ट्राई कर रहे थे, कभी किया नहीं है पता नहीं था, लेकिन ट्राई किए बार बार, पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में लास्ट में एकदम अंतिम समय आता जब प्रभुपाद जी आ रहे थे, फ्लश का दबाया बटन ठीक हो गया, तो बड़ी संतुष्टि उनको के अच्छा हुआ कि अब सब तैयार है, प्रभुपाद जी आएंगे। प्रभुपाद जी आए, बैठे, सबको दर्शन दिया, बातचीत हुई, फिर उन्होंने बताया मैं अब स्नान करने जाना है। तो प्रभुपाद जी ने गामछा अपना लिया और गामछा लेकर बोले अभी मैं मल त्याग करने जाऊंगा। तो महाराज ने गाइड किया कि चलिए यहाँ पे अच्छे टॉयलेट की व्यवस्था है, फ्लश है वगैरह। प्रभुपाद जी कहते एक लोटा लेके आओ एक लोटा पानी भरे और सीधे जंगल चले गए, टॉयलेट को देखा, फ्लश देखा, सब कुछ बरोबर है, लेकिन सीधे जंगल चले गए। और फिर आए हाथ वगैरह धोके, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे ये नेचुरली अच्छा लगता है, मुझे ये आर्टिफिशियल ये सब टॉयलेट, ये फ्लश, ये सब जो बड़े बड़े जो राजमहल सिस्टम होते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जहां तक संभव है, जहां पे जंगल है, जहां पे प्राकृतिक है, वहां पे तो मैं वैसे ही जाता हूं। अतः प्रभुपाद जी ने एक अच्छा प्रिंसिपल सिखाया, जो महाराज कहते राधानाथ महाराज, उन्होंने कहा कि रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस जो होता है, वन शुड नॉट बी अटैच टू द रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑल्सो। मीन्स जो भक्ति में सेवा कार्य किया गया है उससे जो फल मिलता है उस फल से भी हमें अनासक्त रहना पड़ता है। वो फल भी हमारे लिए नहीं है, वो फल भी हम कृष्ण को ही अर्पण करें। अब तक हम क्या सीख रहे हैं? भौतिक कार्यकलापों का, हमारे कर्म का फल हम आसक्त न रहे, गुरु को दे दें। अब यहां पे महाराज सिखा रहे कि भौतिक नहीं, भक्तिमय कार्य का फल जो हमें मिलता है वो भी हम गुरु को ही दे दें, उसका भी हम जरा भी ये ना सोचे कि हम भोग कर ले। बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा तथ्य है। इसको एक्चुअली अभी एक दो तीन साल उसका मनन करते, चिंतन करते समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना गहरा राज है जो प्रभुपाद जी सिखाते हैं। अपने डिवोशनल सर्विस का जो फल है भक्ति का, उसे भी हम अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा कीर्तन करे मान लो, तो फेमस होएगा ही, स्वाभाविक है उसकी कीर्ति होगी। तो ये हम सीख रहे हैं यहां से अभी कि ये कीर्ति का फल भी हम भगवान को ही दे। हम कीर्तन अच्छा कर रहे ये कीर्ति ना चाहे, हम कीर्तन में जिसका गुणगान गाया जा रहा है उसकी कीर्ति हो। प्रवचनकर्ता का भी ये ना सोचे कि मैं अच्छा प्रवचन दे रहा हूं मेरी कीर्ति हो रही है, प्रवचन में जिसका गुणगान गाया जा रहा है उसकी कीर्ति हो। श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से ये करके भी दिखाया अनेक बार। फिर मैंने जब ये पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि कहां कहां श्रीला प्रभुपाद जी ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, क्योंकि हमें सीखना है तो कुछ ज्वलंत उदाहरण चाहिए कि प्रभुपाद जी ने देखिए अपने जीवन में ये किया है। तो मेरे ध्यान में आया 1975 से लेकर 77 की घटना है। 1975 में श्रीला प्रभुपाद जी का स्वयं का पुत्र जो कलकत्ता में रहता था, उनके दो पुत्र थे पता है ना, प्रयाग और वृंदावन। उनके पुत्र जो उस समय कलकत्ता में रहते थे जब प्रभुपाद जी फॉरेन से टूर करके प्रचार करके विदेशी भक्तों के साथ मायापुर आए थे, और मायापुर में हमारा इस्कॉन मंदिर के लिए जमीन खरीदा था। सिर्फ जमीन था, जंगल था, एक छोटी सी कुटिया थी जहां प्रभुपाद जी का भजन कुटीर है, वहां थे तब की यह घटना है। वृंदावन आके अपना बेटा आके कहता है कि पिताश्री आप मेरे पिता है, आपकी ये जो सारी संपत्ति है उसमें मेरा कुछ तो छोटा सा हक बनता है। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं परिवार के साथ कहीं भाड़े के घर में, किसी मित्र के घर में, झोपड़ी में ऐसे ही रह के बिता रहा हूं। मेरे पास खुद के लिए रहने के लिए घर नहीं है, और आपके पास कई कितने मंदिर संपत्ति है, कम से कम मुझे एक घर खरीदने जितना तो पैसा दीजिए। देखिए अपना खुद का पुत्र कह रहा है, हाँ, प्रभुपाद जी से, पिता से कह रहा है, हाँ, कि मुझे थोड़ा पैसा दीजिए, कम से कम एक घर खरीदना चाहता हूं। घर खरीदने के लिए अभी कलकत्ता में उन दिनों में कहां ज्यादा पैसा लग रहा था, 100 रुपये की बात थी केवल, ओनली 100 रुपीज इन 1975-76 ड्यूरेशन में। और उन दिनों किसी को पता है कि श्रीला प्रभुपाद जी की पर्सनल इनकम कितनी थी? पर्सनल इनकम का मतलब समझते हैं ना, खुद की कमाई, मंदिर का डोनेशन नहीं, मंदिर की सेवा से कुछ नहीं, अपना खुद का भी तो कुछ प्रभुपाद जी कर रहे हैं, तो खुद की कमाई कितनी थी उनकी उस समय में पता है? देखो अपनी खुद की कमाई पर्सनल उस पिता की, जिस पिता के पास, जिस पिता के बेटे के पास घर नहीं है और वो रोते हुए कह रहा है पिता घर दीजिए, उनकी डेली इनकम थी 50,000 रुपया उनकी खुद की, जिसके ऊपर ये डोनेशन नहीं है यार, ये किसी से मिला हुआ फुकट में नहीं है, ये उनकी खुद की मेहनत की कमाई है जो खुद कमा रहे हैं रोज का। कैसे? ग्रंथ कौन लिख रहे थे? प्रभुपाद जी, है ना, पूरा ग्रंथ कौन लिखते हैं? प्रभुपाद जी। तो ग्रंथ जब लिखा हुआ बेचा जाता है तो उसमें रॉयल्टी किसको मिलनी चाहिए? रॉयल्टी तो लेखक को मिलती है, उसकी जो प्रॉफिट होती है उसमें 20% तो कम से कम रॉयल्टी लेखक को मिलती है। उन दिनों में प्रभुपाद जी के शिष्य विदेशों में जो डॉलर्स में ये किताबों का वितरण करते थे, अगर किताब की मूल कीमत निकाल लो, उन सारे संस्थाओं का जो खर्चा हो रहा है वो निकाल डालो, फिर भी जो रॉयल्टी केवल गिनी जाए तो वो भी 50,000 रुपया आ रही थी। इतने बड़े धनी व्यक्ति थे, लेकिन कभी शिला प्रभुपाद जी ने उसमें से एक रुपया भी नहीं रखा अपने पास, हाथ भी नहीं लगाए। और शिष्यों को कह देते हैं सीधे इस्कॉन अकाउंट में डाल दो, सीधे इस्कॉन अकाउंट में। अपना अकाउंट कभी नहीं रखा, बैंक अकाउंट नहीं रखा, सीधे बोलते थे इस्कॉन अकाउंट में डालो, उस पैसे से मंदिर बनते रहेंगे। यहां बेटा आके कहता है मुझे घर चाहिए, प्रभुपाद जी ने मना किया, प्रभुपाद जी ने मना कर दिया अपने बेटे को। बोले नहीं दे सकता हूं मैं तुम्हें, अहम बीज प्रद पिता, ये पिता है उनके जिसकी इनकम 50,000 रुपया है, अपनी पर्सनल इनकम। आज तक मैं नहीं सोचता हूं ऐसा कोई पिता है संसार में अपने बेटे को मना। इसे कहते हैं डिवोशनल सर्विस का फ्रूट भी हम अनासक्त हो जाएंगे। अच्छा, उसी परिस्थिति में उन्हीं दिनों की बात है, वृंदावन में भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, पुत्र नहीं है भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अपने पुत्र है ना, शिष्य हुए तो पुत्र हो गए, ये पिता है। उन्हीं दिनों में भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जाके वृंदावन में प्रभुपाद जी से कहते हैं कि आपने मुझे बताया कि प्रचार करो वैज्ञानिकों को, तो इस प्रचार के लिए भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, अब मैं ये पैसा कहां से लाऊं। प्रभुपाद जी ने तुरंत पूछा कितना पैसा चाहिए, बहुत चाहिए 10,000 रुपया चाहिए, तुरंत ही चेक लिख दिया, बोले ये लो 10,000 रुपया, तुरंत जाओ प्रचार करो। एक जगह पे जिसको वो दीक्षा अभी अभी दिए मिले ही नहीं थे, एक साल भी पूरा नहीं हुआ है जिन्हें मिले हैं, वो उनके पहले वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते एक भौतिक दृष्टि से। वो कहते हैं कि मुझे प्रचार के लिए चाहिए बहुत पैसा। प्रभुपाद जी ने न केवल पैसा दिया लेकिन क्या कहा मालूम है, आज के बाद आप लोग, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज और उनके शिष्य जो दो तीन बैठे थे उन सबको बताया, आप लोग डोनेशन के लिए कभी कहीं नहीं जाएंगे, आप अपना समय इसमें नहीं गवाएंगे, आप केवल वैज्ञानिकों को और बुद्धिशाली जीवों को प्रचार करेंगे, आपको जितना भी कभी भी चाहिए मुझसे आकर ले जाना, मैं तुम्हें दूंगा वो धन। और यहां एक पुत्र को अपने ही बेटे को कह देते कि मैं तुम्हें 100 रुपया नहीं दे सकता घर के लिए। जब वो बहुत जिद पकड़ा तो वो पिता क्या कहते पता है, लोन चाहिए तो देता हूं 100 रुपया, लेकिन एक शर्त, मेरे इन पुस्तकों का वितरण तुम्हें कलकत्ता में करना पड़ेगा और उससे जो मुनाफा होगा उसको बचा बचा के तुम्हें लोन भरना पड़ेगा ये 100 रुपया, अगर वो चाहिए तो बोलो। इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना, अपने भक्ति में सेवा का जो फल मिल रहा है उससे भी ये व्यक्ति कितने अनासक्त है भगवान को, भगवान के प्रचार को, और अपने आध्यात्मिक बेटे जो प्रचार कर रहे उनको अर्पण कर रहे, परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। अब ये भी नहीं कर रहे, उपेंद्र प्रभु जो थे 1977 वृंदावन, प्रभुपाद जी से कहते हैं कि, प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और कहा कि देखिए मेरी आंखों में थोड़ा कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है और बहुत जल रही है, दुख हो रहा है, तो एक प्लास्टिक का एक जो योगा करने वाले मालूम है वो पानी डाल के आंख से पानी ऐसा उस नली से डालते और फिर बाहर निकाल के जो शुद्धिकरण होता है योगिक आयुर्वेदिक जो भी उसे कहो, बोले ऐसी एक नली खरीद के लेके आओ कहीं से, मुझे ये आंख में ऐसा पानी डाल के ठीक करना है, वो विधि है कुछ पता नहीं मुझे ठीक से, क्योंकि मैंने नासिका का सुना था, किया भी एक दो बार मुझे करवाया था लोगों ने, कि यहां से नासिका से पानी डाल के नमक वाला ऐसे निकालते तो उससे क्या होता है कि जो साइनस या ऐसे सर्दी वगैरह प्रॉब्लम कम होते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मुझे आंख से इस तरह से करना है, तो वो एक ट्यूब लेके आइए, तो वो गया, उपेंद्र प्रभु उनका शिष्य था, गए लेके आए, प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा है, पूछा कितने की लाए, तो बोले 4 रुपए की। बोले अरे ये 4 रुपए की तो चीज ही नहीं है, ये तो केवल 1 रुपए की चीज है, जाओ वापस 3 रुपया लेके आओ। अरे 3 रुपया प्रभुपाद जी के लिए एकदम मामूली रकम थी, हालांकि उन दिनों में 3 रुपया बड़ी चीज होती है, लेकिन जो 50,000 जिसकी मान लो दिन की तनख्वाह, 3 रुपया क्या है, हजारों शिष्य जिनकी सेवा में है, बड़े बड़े मंदिर है, कई कितने फॉरेनर्स उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। अब ये प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ये मेरा 3 रुपया नहीं बिगड़ा है, ये भगवान का 3 रुपया हम बिगाड़ रहे हैं। भगवान की संपत्ति बिगाड़ने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, आप जाइए। वही एक बार उन्होंने एक स्पीड पोस्ट करवाया था वृंदावन में एक शिष्य से, तो स्पीड पोस्ट प्रभुपाद जी पूछे स्पीड पोस्ट में कितना लगेगा, तो बोले 1 रुपया। कुएं कितना लगेगा, बोले 2 रुपया। कुरियर कितना पहुंचाएगा, कभी पहुंचाएगा, बोले कल। स्पीड पोस्ट 2 दिन के बाद। तो प्रभुपाद जी कहते अगर कृष्ण का 1 रुपया बच रहा है ना तो स्पीड पोस्ट में डालो, वैसे कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, 1 रुपया बचाइए कृष्ण की सेवा में लगाइए। ये प्रिंसिपल समय शिला प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं। हा? हम अपने भौतिक, हम जो बाहर जो हम लोग नौकरी धंधा जो कुछ करते हैं ना, हम अपना धन कमाते तो हम बहुत आसक्ति रहते हैं और हम जस्टिफाई कर रहे हैं हम कमा रहे हैं, ये तो हमको सिखाया गया, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं कि हम अनासक्त बने भगवान की सेवा में लगाए। प्रभुपाद जी यहां तक कहते हैं कि अपने डिवोशनल सर्विस का भी फल जो हमें समाज से मिल रहा है वो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हालांकि उस दिन ऑफरिंग में ये सबक समय नहीं मिला था कि बहुत लेट शुरू हुआ था, फिर भक्ति विकास महाराज आए थे, तो उस दिन मैंने ये सोचा था कि प्रभुपाद के तिरुभाव के दिन ऑफरिंग में शायद मैं ये बताऊंगा। क्योंकि एक दो दिन पहले ही एक भक्त मुझे बता रहे थे कि कैसे उनका अनुभव से वो देख रहे हैं कि कभी कभार ये घटनाएं हो जाती है कि भक्त लोगों से धन प्राप्त करते हैं कृष्ण सेवा के नाम पे, लेकिन कैसे पॉकेट में रख लेते हैं। 100 में से कोई एकादा रहता है, लेकिन करने वाले ऐसा करते हैं। तो उन लोगों को भी प्रभुपाद जी से बहुत कुछ सीखना है। आप ईमानदारी से जितना चाहिए मांग लो, ले लो, बताकर ले लो। हाँ, बीमार है तो 10 लाख रुपया भी लगे तो ले लो। लेकिन एक्चुअली अप्रामाणिकता जितना हम कर रहे हैं गुरु से गौरांगा से, तो वास्तव में वो हमारा ही नुकसान है, गुरु गौरांगा का कोई नुकसान नहीं है उसमें। हाँ, उनकी ही संपत्ति है लक्ष्मी। तो ये सब सुनने में जब वास्तविक उदाहरण के सहित मिलता है ना, तो बड़ा दुख और कष्ट होता है कि ऐसा सब क्यों करते हम लोग। अब इतना अमूल्य मनुष्य जीवन मिला, इतना प्रभुपाद जी का ग्रंथ मिला, सीखने मिला, समझने मिला, अपनी मेहनत से कमाओ, अपने लिए रखो, वहां तक तो सीमित है, ठीक है। हालांकि वेद तो वो भी मना कर रहा है, लेकिन हम कहां वेद की सुनने वाले भैया, तो ठीक है। लेकिन अब भगवान के लिए कोई आपको बांसुरी दे दे, आप बांसुरी बेच दे, अपने गहने बनाए अपने लिए, इससे मजा करे, तो ये सब जीवन में क्या फायदा होता है यार। अपना जीवन पे हम अपना बर्बाद कर रहे। फिर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ सालों तक आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रख के चलिए। जब जब हम किसी का संस्था का प्रभुपाद जी किसी का 1 रुपया भी व्यर्थ का खर्च कर रहे हैं, तब ये डेंजर को ध्यान में रखना चाहिए। अलर्ट, 1-2 करोड़ सालों का एक्सटेंशन भौतिक जगत में अन्य योनियों में अपना रिजर्वेशन करवा रहा हूं। क्यों और कैसा, इवन गाय भी बने तो देखो ना कितना कष्ट हो गया। आप देखिए एक दिन घर में बैठ के एक जगह पे 10 दिन 15 दिन बैठ के देखिए। अमेरिका में साइंटिस्ट लोग चैलेंज करते हैं मालूम है, कि एक बंद कमरे में अगर अकेला आदमी आप 6 महीना रह के, तो आपको करोड़ों रुपया हम देने को तैयार है। लोग नहीं कर पाते, वो लोग प्रयोग करना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसको 6 महीना एक कमरे में अंदर बंद करके रख दिया तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है उसका वो प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन कोई मनुष्य सशक्त बुद्धिशाली जीव तैयार होना चाहिए ना, उसको लालच दे रहे तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे 2 करोड़, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कितना बड़ा कष्ट रहेगा ना। तो देखा जाता है कि मनुष्य धन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन ये कितना बड़ा कष्ट रहेगा कि वो बोल देता है नहीं हो रहा है उससे, है ना। लेकिन वो कंपल्सरी कष्ट है उस गाय को, कंपल्सरी, कोई चॉइस नहीं है, नहीं छूट सकती, वो कंपल्सरी कष्ट है उस पहाड़ को। वो कंपल्सरी कष्ट हम पे भी करोड़ों सालों के लिए आ सकता है। अच्छा भक्ति में सेवा न कर सके ये हमारी दुर्बलता है, तो हम स्वीकार करें नम्रता से, लेकिन कम से कम गलत कार्यों को अपने शरीर भोग के लिए न करें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितना भोग भगवान दे रहे हैं उतना ही हम भोगें, उससे ज्यादा जबरदस्ती भोगने का प्रयत्न करना व्यर्थ की बात है, कोई फायदा इसमें नहीं हो सकता। ये शिला प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं। वन शुड नॉट बी अटैच टू द रिजल्ट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। हाँ, डिवोशनल सर्विस कितना हायर प्रिंसिपल्स है, ये मैं पहली बार एक्चुअली सिखाऊं 2-3 दिन पहले, राधानाथ महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। अब पता नहीं इसके ऊपर और मुझे देखना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी के जीवन में कहाँ कहाँ, जो दो घटना तीन घटना याद आई मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसी अनेक घटना रहेगी जहाँ प्रभुपाद जी इन तथ्यों को सिखाते आ रहे हैं और हमें आगे चल के इन्हीं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बार बार इन्हीं को पढ़ना है। बस लिमिट क्या हमारी बुद्धि है, क्या हमारे पास समय है, कहाँ शक्ति है, कौन से बड़े हम ब्रह्मांड के प्रचारक बनने वाले हैं, जो है लिमिटेड। हमारे प्रभुपाद जी का ग्रंथ, हमारे प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्यों का ग्रंथ, हमारे इस्कॉन के जो लोग हैं जो प्रभुपाद जी के संस्था में प्रामाणिकता से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के ग्रंथ, उससे बाहर हमको अपने आप को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की, लेट हो गया है तो प्रश्न नहीं लेंगे। हरे कृष्णा।